लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि वर्तमान युग के परिवारों को प्रेम, सम्मान और मार्गदर्शन मिलता रहे तथा वे दिन ब दिन अपने विश्वास में विकसित होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत छोटानागपुर के प्रेरित ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स के जीवनी पर एक चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रोताओं, इन दिनों हम छोटानागपुर के प्रेरित फादर कॉन्स्टेंट लेबन्स के जीवनी पर गौर कर रहे हैं। उनका जीवन ख्रिस्त के प्रति प्रेम एवं मिशन के प्रति उत्साह का ज्वलंत उदाहरण है। उन्होंने न केवल छोटानागपुर में कलीसिया की स्थापना की बल्कि उसके सुंदर भविष्य के निर्माण हेतु अथक प्रयास भी किया। आज की इस कड़ी में हम देखेंगे कि छोटानागपुर के भविष्य के लिए उनकी क्या योजनाएं थी। फादर लेबन्स अपनी योजना के बारे अपने प्रोविंशियल को बतलाते हुए लिखते हैं, मेरी एक योजना है जिसके बारे मैंने अच्छी तरह सोच लिया है, जो मेरे मिशन को सहारा देगा, किंतु यह योजना कठिनाइयों के बिना पूरी नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में रांची में हमारे पास उच्च विद्यालय होगा, प्रेस होगा एवं 1,00,000 ख्रिस्ते होंगे। मरने से पहले मैं इसे पूरा होते हुए देखना चाहता हूँ। हमने यहाँ हमेशा एक विशाल एवं सुंदर मिशन स्थापित करने का स्वप्न देखा है और यह हमारी गलती होगी यदि हम इसे पूरा नहीं करेंगे। फादर डिस्मिथ के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आ रहा था और वे तोरपा लौटने वाले थे एवं यूरोप से नए पुरोहितों को भी भेजा जा रहा था, किंतु इस बीच फादर लेबन्स अकेले थे। वे एक साथ ख्रिस्तों को प्राप्त करने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे थे। वे 500 रुपये के उधारी भी थे जिसको ना तो महाधर्म अध्यक्ष एवं ना ही सुपीरियर चुका पा रहे थे। इस प्रकार मिशन को भविष्य में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने एक योजना तैयार की जिसके अनुसार हर गांव को अपने स्कूल को समर्थन देना था और हर गांव के पास अपना मिशनरी होना था, बशर्ते कि वहां विरोध करने के लिए कोई प्रोटेस्टेंट ना हो। अगस्त के मध्य में फादर लेबन्स अदालत के काम से रांची गए। मदरसा हाउस के बरामदा में हो हल्ला मच गया जब किसी ने आवाज दी, आता है आता है। नौकर, प्रचारक, स्कूल के बच्चे और उनके शिक्षक सभी प्रवेश द्वार की ओर भागे, जहां उन्होंने मालिक के बिना एक घोड़े को देखा जिसको उनका चौकीदार सवारी कर रहा था। चौकीदार ने कहा, लेबन साहब सीधे मजिस्ट्रेट के पास गए और वे मनरेसा हाउस दूसरी बेला आएंगे। इस बीच चौकीदार सबके आकर्षण का केंद्र बना रहा। वह फादर लेबन्स के घोड़े के बारे विभिन्न किस्से सुनाने लगा। जब फादर लेबन्स मनरेसा हाउस आए तब उनकी मुलाकात असनसोल के अपने एक पुराने मित्र फादर स्केफेयर से हुई। वे उन्हें आराम करने ले गए। फादर लेबन्स को बुखार था और उनके पैर एवं हाथ फोड़ों से भरे थे। दो दिनों तक आराम करने के बाद कुछ ठीक होने पर उससे आग्रह किया गया कि वह एक महीना वहीं रहकर आराम करे जिससे कि वह अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर ले। इस पर उन्होंने जवाब दिया, एक महीना? आप लोग मजाक कर रहे हैं। तब मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, इसके बारे कल बात करेंगे। अगले दिन 17 अगस्त 1887 को एक छोटी चिट्ठी छोड़कर बड़े सवेरे वहाँ से निकल गए। चिट्ठी में लिखा था, माफ कीजिएगा, मैं इससे ज्यादा नहीं रुक सकता। आज मुझे फिर से दो गांवों का दौरा करना है। लाख लाख शुक्रिया, अलविदा। फादर लेबन्स रांची से तोरपा लौटे। उनके साथ फादर कजिट और ब्रदर सीज भी थे। फादर काजेट उस समय मनरेसा हाउस में ट्रस्टनशिप कर रहे थे और फादर ग्रोसी ने उन्हें फादर डेस्मिथ के वापस लौटने तक अस्थायी रूप से उन्हें फादर लीबन्स का सहयोगी नियुक्त किया था। ब्रदर सीज जो फादर लीबन्स के साथ ही भारत से आए थे, वे अभी तक स्कॉलास्टिक थे और अपने दर्शन शास्त्र की पढ़ाई असनसोल से पूरी कर रहे थे। उन्हें बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी क्योंकि उनके सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन्हें भी तोरपा भेजा गया जिससे कि वह अपने सिर दर्द से ठीक हो सके और साथ ही फादर लीबन्स को भी कुछ मदद दे सके। तोरपा में दोनों सहयोगियों के लिए पर्याप्त काम थे क्योंकि उन दिनों वहां मुंडाओं का कैथोलिक धर्म में प्रवेश का आंदोलन जोर हो गया था। फादर काजेट लोगों को मार्गदर्शन देते एवं गांव में जाकर नए ख्रिस्तों को बपतिस्मा देते थे। ब्रदर घर की देखभाल करते थे एवं फादर काजेट और फादर लीबन्स को उनकी यात्रा में साथ देते थे। इस तरह फादर लीबन्स की गति कभी धीमी नहीं हुई। उनके दिनचर्या और प्रतिदिन के कार्यों में कभी परिवर्तन नहीं हुआ। वे सुबह बहुत जल्दी उठ जाते थे। लोगों की मुलाकात है तो आने शुरू करने से पहले वे अपनी प्रार्थना एवं मिस्सा बड़ी भक्ति से पूरा कर लेते थे। शाम को जब सब लोग चले जाते थे तब वे प्रार्थना करते थे। काम सुबह 9 बजे शुरू होता था और देर शाम तक जारी रहता था। दिन के बीच बीच में वे पौत्र संस्कार की भेंट करते थे और यदि किसी जरूरी काम से व्यस्त रहते तो ब्रदर सीज को प्रार्थना करने के लिए भेजते थे या कहते हुए, जाओ और प्रार्थना करो एवं कृपा मांगो कि हम उन सभी लोगों पर भी विजय पा सकें। तोरपा में अब भी गरीबी थी किंतु फादर लीबन्स बड़े उदार थे। उनके साथी तोरपा का अनुभव बतलाते हुए लिखते हैं, हमारी गरीबी और असुविधाएं अनंत थी। हमारा सामान्य भोजन था चावल दाल काली चाय और टोस्ट किया हुआ ब्रेड। ब्रेड राजे से सप्ताह में एक बार लाया जाता था और उसे टोस्ट कर दिया जाता था ताकि उसे बिगड़ने से बचाया जा सके। मांस बहुत कम खाया जाता था। अंडा वहाँ रहते हुए कम से कम एक या दो बार खाए। भोजन के संबंध में फादर लीबन्स अपने साथियों के प्रति उदार थे। एक बार एक व्यक्ति शुक्रवार के दिन कुछ बतख बेचने लाया। उनके साथियों ने उसे रखने की इच्छा जाहिर की। इस पर वे तुरंत रखने के लिए तैयार हो गए और सभी बतख खरीद लिए गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि फादर लीबन्स न केवल अपने मिशन के प्रति उत्साही थे बल्कि अपने समर्पित जीवन के प्रति भी पूरी तरह निष्ठावान थे। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत ईश सेवक फादर कॉन्स्टेंट लीबन्स की जीवनी पर एक चर्चा प्रस्तुत कर रहे थे। इस पर हम चर्चा आगे भी जारी रखेंगे।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटक 7 समुंदर पार। लेखक है विजय पंडित। श्रोताओं, आपने कभी समाचार पत्र में या टीवी में किसी शहर में हुए दंगों के दौरान या युद्ध में गुमशुदा लोगों के सालों बाद वापस आने के बारे में समाचार पढ़ा या सुना होगा? युद्ध में तो अनेक सैनिक शहीद हो जाते हैं और अनेक शत्रुओं के हाथों पड़ जाते हैं और लापता सैनिकों को भी शहीद घोषित कर दिया जाता है। सालों बाद अपनों से मिलने की खुशी का वर्णन नहीं किया जा सकता, पर क्या आपने कभी सोचा होगा कि इन सालों में खोए हुए व्यक्ति के परिवार वालों पर क्या गुजरती होगी। कुछ तो मिलने की आस ही छोड़ बैठते होंगे और कुछ झूठ का सहारा लेकर जीते हैं। छोटे बच्चों को सच कैसे बताएं? कहते हैं अभी ये छोटे हैं, सोचने समझने की उम्र आने पर उसे बता दिया जाएगा। बच्चे छोटे जरूर हैं, पर उन्हें भी उनकी समझ और मानसिक स्थिति को देखते हुए जीवन की सच्चाई से रूबरू करा देना चाहिए। आशा है आज का नाटक इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं विजय पंडित की लिखी नाटिका सात समुन्दर पार।
चार समुन्दर पाल छे, गुलियों के बाजाल छे, अच्छे अच्छे गुलिया लाना, गुलिया चाहे ना लाना, पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी।
अरे मिनी, ये तो खिड़की में अकेली क्यों बैठी है बेटा? आज बाहर खेलने नहीं जाना?
मम्मी मम्मी, पापा कब आएंगे? कितने दिन हो गए?
आएंगे बेटा मिनी, जल्दी आएंगे। वो सात समंदर पार गए हैं ना, देखना वो तेरे लिए ढेर सारी गुड़िया और चॉकलेट्स लाएंगे। हाँ
मम्मी मम्मी, जब के पापा आते हैं? मेरे पापा क्यों नहीं आते मम्मी? बताओ ना मम्मी। मम्मी, तुम पापा को चिट्ठी क्यों नहीं लिखते हो? बोलो ना मम्मी, तुम चिट्ठी लगोगे ना तो पापा जल्दी आ जाएंगे।
अच्छा मिनी, मैं तेरे पापा को आज ही चिट्ठी लिखती हूँ। अब तो दूध पी ले बेटा, और बाहर बच्चों के साथ खेलने भी जा। ले जल्दी से पी। हाँ जल्दी जल्दी।
मेरी प्यारी मम्मी, लाओ लाओ दूध लाओ। अच्छा मम्मी मम्मी, पापा को जल्दी से चिट्ठी लिख देना। हाँ मैं जा रही हूँ खेलने के लिए। बाय मम्मी।
बाय मिनी। बाय बेटा।
बाय।
किसको चिट्ठी लिखूं और क्या लिखूं? ये नाटक करते करते मैं थक गई हूँ। भगवान, मैं थक गई हूँ। ये सदमा मैं तो झेल रही हूँ, मगर मैं इस भूल सी बच्ची को कैसे समझाऊं कि उसके पापा इस दुनिया।
अरे विद्या, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है?
अरे कुछ नहीं उर्मिला, बस ऐसे ही आंखों में कचरा पड़ गया था।
मैं देख रही हूँ विद्या, आजकल तुम मुझसे कुछ छुपाने लगी है। तू अब पहले जैसी नहीं रही।
पहले जैसा वक्त कहाँ रह गया है उर्मिला? मैं थक गई हूँ नाटक कर करके। मैंने अभी तक मिनी को नहीं बताया है कि इसके पापा इस दुनिया में नहीं है।
क्या, ये क्या कह रही है तू?
हाँ
नहीं विद्या, तुझे तो बता देना चाहिए था मिनी को सब कुछ। कब तक उससे छुपाती रहेगी? नहीं, ये तू बहुत गलत कर रही है।
उर्मिला, क्या सही और क्या गलत, इसका हिसाब करना मैंने छोड़ दिया है। मैं तो बस अपनी बच्ची को खुश देखना चाहती हूँ, और वो जैसा चाहती है वो करने का मन करता है, बस।
लेकिन विद्या, इतना जज्बाती होना ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं ये तुम दोनों के लिए घातक है। मैं तो कहती हूँ आज ही मिनी को सब कुछ बता दे।
नहीं नहीं उर्मिला, ऐसा मत करना। अभी 2 महीने पहले ही मिनी को बहुत तेज बुखार आया था, और डॉक्टर ने कहा है मिनी बहुत सेंसिटिव है, उसे अभी किसी बात का पता नहीं चलना चाहिए। तू समझने की कोशिश कर, तू मेरी सहेली है ना।
हे भगवान, कैसी परीक्षा ले रहा है तू इस नन्ही मिनी के साथ, थोड़ा तो इंसाफ कर।
उर्मिला, तू मेरा एक काम करेंगी?
हुँ?
तू एक इसके पापा के नाम से चिट्ठी डाल, मेरी बच्ची बहुत खुश हो जाएगी।
नहीं विद्या, ये मुझसे नहीं होगा। मैं नहीं लिख पाऊंगी चिट्ठी।
तुझे मेरी कसम है उर्मिला।
अच्छा ठीक है विद्या, मैं तेरी और मिनी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ।
अरे मैं बातों ही बातों में तुझे तो चाय देना ही भूल गई।
ठीक है विद्या, फिर कभी।
मम्मी मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं? मम्मी बोल ना मम्मी। मम्मी तुमने पापा को चिट्ठी लिख दी है ना?
मिनी हम उर्मिला मौसी के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ शरारत नहीं करना मगर, सुनो। हाँ
पर तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया मम्मी, बताओ ना तुमने चिट्ठी लिखी कि नहीं लिखी पापा को?
अरे मिनी ये देखो तुम्हारे पापा की चिट्ठी आई है।
अरे उर्मिला हम तेरे पास ही आ रहे थे, कहाँ है चिट्ठी? अरे दिखा दिखा।
उर्मिला मौसी मेरे पापा की चिट्ठी पढ़कर सुनाओ ना, क्या लिखा है मेरे पापा ने सुनाओ ना।
मेरी प्यारी मिनी और विद्या को ढेर सारा प्यार, अपने मम्मी का ख्याल रखना और विद्या तुम मेरी मिनी का ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस लौट के आऊंगा और तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट्स और गुड़िया भेज रहा हूँ, तुम्हारा पापा।
और ये लो तुम्हारी प्यारी सी गुड़िया और ढेर सारा चॉकलेट्स।
थैंक यू उर्मिला आंटी। मम्मी मम्मी मैं अपनी गुड़िया को लेकर दोस्तों के पास जा रही हूँ खेलने के लिए।
हाँ मिनी तुम जाओ खेलने जाओ, दोस्तों के साथ खूब खेलना। हाँ
मैं समझ गई विद्या, तुझ पर क्या बीतती होगी, मुझसे तो नहीं होता ये नाटक। और मिनी के सामने तू ऐसा कर रही थी जैसे लोकेंद्र भी है, जिंदा है। विद्या चलो आज हम सब घूमने चलते हैं, चल तेरा भी मन बदल जाएगा।
ठीक है उर्मिला।
चलो
बेटा। मिनी जरा देखना तो बेटा, दरवाजा खोलना।
मम्मी मम्मी है ना बाहर है ना कोई अंकल आए हैं, दाढ़ी वाले हैं और है ना उनका तो है ना एक हाथ भी नहीं है।
दाढ़ी वाले और एक हाथ भी नहीं?
हाँ मम्मी।
मैं देखती हूँ। अरे आप, हे भगवान मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? मैं कितनी अकेली हो गई थी आपके बिना, कैसे दिन गुजारे हैं हम दोनों ने आपके बिना।
पापा पापा आपके हाथ को क्या हो गया? फिर आपने हमको चिट्ठी कैसे लिखी थी पापा?
चिट्ठी? हाँ बेटे ये चिट्ठी मैंने नहीं लिखी, मैंने अपने दोस्त से लिखवाई थी। विद्या कैसी हो तुम, मत रो तुम।
तुम कैसे हो?
मम्मी मम्मी आज तो मुझे मेरे पापा मिल गए, चमंदर पाल छे गुड़ियों के बाजाल छे।
बेटा मिनी मैं तुझे बहुत मिस करता था, पर दुश्मनों के बीच फंस गया था मैं, मैंने जंग जीत ली है बेटा, जंग जीत ली है तेरे पापा ने।
तुम्हारे पापा तो बहुत बहादुर है मिनी।
हाँ मम्मी मैं ना सबको बताऊंगी कि मेरे पापा बहुत बहादुर है और मेरे पापा वापस आ गए हैं।
सात समुंदर पार, अभी अभी आपने यह नाटिका सुनी, इसके कलाकार थे भवानी कौल, पूजा केलकर और विजय पंडित। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।